ਨਮੋ ਰਾਮ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਜਨ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਕੇ ਵੰਦ ਵਿਘਨ ਹਰਣ ਮੰਗਲ ਕਰਣ ਰਾਮਦਾਸਯਾਨੰਦ ਮਸਤਕ ਪਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਹਿਰਦੈ ਵਿਰਾਜੇ ਰਾਮ ਰਾਮਦਾਸ ਦੋਨੋਂ ਪਖਾਂ ਸਭ ਵਿਦ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਚਿੰਤਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕੋ ਮੋ ਮਨ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਜਾਯੋ ਸੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੋਵਿੰਦ ਵਿਭੂਂ ਪਦ੍ਮਨੇತ್ರਂ ਦਧਾನਂ ਤੁਰੀਯਂ ਪ੍ਰਕಾಶಸ್ವರೂಪಂ ನುತಂ ವಿಶ್ವದೇವೈ ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಶುಭಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಸ್ತುವೇ ವೇದವೇದ್ಯಂ ಗುರುಂ ರಾಮದಾಸಂ ಗುಪಾವಾಸಿ ಜ್ಞಾನೀ ಗುರುಪದನಿವಾಸಿ ರವಿಮಹಾ ಹೃದಯನ ಸಂಹಾರೇ ತ್ರಿದಿವ ಪ್ರತಿಹಾರೇ ಸ್ಫುಟಗುಣ ಸಮಚ್ಚೇತೋಹಾರಿ ಸಕಲಮುಪಹಾರಿ ನವಮುದಾಂ ದಯಾಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ. ಓಂ ತಾರಕಂ ತನ್ಮಂತ್ರಂ ರಾಮದಾಸ ಗುರುವಿಷ್ಠಿತಂ ಸದಾಕಾಲಂ ಜಪೇಜಾಪ್ಯಂ ತ್ರಿವಿಧತಾಪವಿನಾಶನಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಾಯೈ ಪ್ರಾಣಿಮೋಕ್ಷಹೇತವೇ ದಯಾಲು ಮಹಾರಾಜೇನ ಮಂತ್ರೋಯಂ ವಣಿತ ಪುರಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶಾಧ್ಯಾಯಶಂಸ ಲೋಕ ಸಾಧಕ ತಮಾದಿದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ವಿಶುದ್ಧಂ ಪರಮಂ ಭಜೇ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನುಷ್ಯೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಅನುಸೃತ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋತಿ ಯತ್ ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯೇತತ್ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಬೋಲಿ ರಾಮ್ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ, ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ, ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ, ಶ್ರೀ ದಯಾಲದಾಸ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ಗುರುದೇವ ಜೀ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ, ಅನಂತ ಕೋಟ ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಕೀ ಜಯ, ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಗುರುದೇವ ಕೀ ಜಯ. ರಾಮ ಉತ್ತಮ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉತ್ತಮ ಸಬ್ ಹೀ ಕೋ ಸಾರಂ ಆಪ್ ದಿಶಾ ಕರ ದೇತ ಉತ್ತಮ ಭವಸಾಗರ ಪಾರಂ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನರು ಧ್ಯಾನ ಉತ್ತಮ ಆತಂ ಪರಕಾಶ ಉತ್ತಮ ಮಿಲಾ ಪರಸಿದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಆನಂದ ವಿಲಾಸ ಉತ್ತಮ ಪರಮ ಗುರು ಪರಮಹೇ ಧರ್ಮ ಅನಾದವತಾವನ ರಾಮದಾಸ ಗುರು ವಂದನಾ ಮನ ವಂಚತ ಫಲ ಪಾವನ ಭೋಗ ಸಮೇನೈ ಸ್ವಾದ ಹೇತ ಸಮಗುಂಜನ ಕೋಯಿ ಪಾಪ ಕಪಟ ಸಮನಾಯ ಸಾಚ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಂ ಸಿರ ಸೋಯಿ ನೇತರ ಸಮನೈ ರೂಪ ಗಿರಾ ನಾಯಕ ಸಮನಾಹಿ ಸುಗಂಧ ನಾಕ ಸಮನಾಯ ಚಂಚಲ ಮನ ಕೋ ಮನ ಮಾಹಿ ಪವನ ಗವನ ಜ್ಞಾತಾ ವಿಲಾಸ ಆತ್ಮ ಸಮ ಪರಚಾ ನಹಿ ಕಾರಜ ಕೋ ಕಾರಣ ಕರ್ಣ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತ ಗುರು ಗಮ ಮಹೀ ಮಾಯಾ ಭಂಜನ ದೀಪ ಹರ ಸದ್ಗುರು ದೃಗತೆಂಜೋಯ್ ಕಾಜಲ ಕಾರಜ ಟೂಕ ಕೋ ಉಯ್ ನೈನ ಪೇ ಹೋಯ್ ಕಾಳಸ ಕರ್ಮ ಜೀವಕ ಜಡ ಕೃಪ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಗುರುತಾಮ್ ಜನ ಪ್ರಸಾದ ಪರಕಾಶಯ ಜ್ಯೋತ ಉದೋತ ಅರಾಮ್ ಚಾರು ಕಯ ಹೇ ನೈಣ ಕೂ ಪುನ ಆಪೈ ಉಜ್ಜಲ ಥಾಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ ಗುರುದೇವ ಕೋ ಆಪ ಜಿಷಾ ಕರ್ಣ್ಯಾಯ ಮೋ ಉಜ್ಜಲ ಏಷೆ ಕರ್ಣ ರಾಮದಾಸ ಮಹಾರಾಜ ನಾಯನ ದೂಜೋ ಆಸರೋ ಜೂ ವಾಯಸ ಬಳ ಜಾ अनंत कोटि ब्रह्मांडदायक परमपिता परमात्मा और परम आराध्य इष्ट गुरुदेव के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम है। अनंत कोटि संत महापुरुषों के चरणों में सादर साष्टांग वंदन है एवं भगवत भक्ति परायण भगवत भाव रखने वाले सभी आबाल वृद्ध भाई बहनों का यथा योग हार्दिक सम्मान है। अपने समय के सदुपयोग की दृष्टि से सत्पुरुषों के वाणी के माध्यम से कुछ सत्पुरुषों से प्राप्त कृपा प्रसादी रूप से प्राप्त वचन ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की जा रही है। प्रभु अपने इन वचनों के माध्यम से आप और हम सब के जीवन में शांति प्रदान करें, यही हमारी उनसे सादर विनती है। गुरु प्रकरण के भाव बड़े गहरे हैं, समझ पाना संभव नहीं है। जितनी बातें याद आती उनमें से कुछ एक भाव ही बता पाते हैं, पूरे वो भी नहीं बता पाते। विशाल ग्रंथ में से कुछ एक जो बातें हैं उनमें आज के प्रसंग में ये बात बताई जा रही है कि जीवात्मा को प्रभु के सम्मुख होने के लिए गुरु महाराज किस प्रकार शक्ति प्रदान करते हैं और प्रभु के प्रति किस प्रकार की शिष्य की निष्ठा होनी चाहिए। बताया भोग समय ने साध हेत समगुंजन कोई, पेट तो भरा हो और हम रोटी खाने के लिए बैठेंगे तो भोजन का कोई स्वाद नहीं आएगा। पेट भरा है, बढ़िया से बढ़िया माल बना हुआ है, लेकिन स्वाद नहीं आएगा। स्वाद का मतलब केवल भूख है, भूख है तो भूख लगी है तो अपना स्वाद लगेगा कोई भी चीज। भूखन देख के लुको बात तो बात है, तो भूख के समान तो स्वाद नहीं है, और वस्तु में स्वाद नहीं है, चीज में स्वाद नहीं है, स्वाद है भूख में। हेत समगुंजन कोई, आपस में स्नेह होता है, अगाध प्रेम भाव होता है, अभिन्न मित्रता होती है, तब गहरी हृदय की जो खास बात है, गुप्त बात है, वो उनके सामने प्रकट कर दिया करते हैं। दोस्त लोग जो जिगरी दोस्त होते हैं उनके सामने अपनी हल्की भारी जो कुछ भी बात होती है सब नहीं कहने लायक बात भी उनके सामने कह देते हैं, क्योंकि आपस में हेत है, प्रेम है। तो इस संसार की बातों से दृष्टांत से हमें समझाते हैं महापुरुषों का कहना है। देखिए, किसी के साथ में कपट भाव रखने के समान पाप नहीं है, वो भी जो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने जिनसे प्राप्त करना है उनके प्रति कपट रखना, तो कपट रखने के समान कोई प्रकार का पाप नहीं है। समर्पण है नहीं, और उनके साथ में हम समर्पित होकर के उनसे कुछ लेना चाहते हैं, ये बड़ा भारी कपट है। इस कपट से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कपट करने का दोष जरूर हमें मिलेगा लगेगा, इसमें कोई रत्ती मात्र भी अंतर नहीं है। सच्चाई के समान कोई धर्म नहीं है, तथा धर्म वो है जो हम सच्चाई के सहारे पर चलते हैं, सच्चाई का बल लेकर के चलते हैं, सच्चाई की शक्ति लेकर के चलते हैं। सच्चाई के बल से हमारे पास में कमजोरी है वो भी बलवती बन जाती है, सच्चाई होती है तब। रामदास जी महाराज मेलाना गांव में विराजमान थे, भजन कर रहे थे, गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सिंधल में विराजमान रामदास जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके मेलाना गांव में भजन करने के लिए आए। वहां भजन कर रहे थे, 19 दिनों की बात है, एक दिन दक्षिण की मराठा सेना राजस्थान में तरह तरह के उत्पात मचाती हुई, लोगों के इशारे पर बुलाने पर आ गई। वो राजा लोगों का आपस में बैर भाव होता तो किसी से बदला लेने के लिए दूसरों को बुला करके और यहां इस प्रकार उत्पात मचाया जाता था कि इनको वश में करना। तो उस समय उनको इधर बुलाया गया था, तो वो फौज आई हुई थी राजस्थान में मारवाड़ में, और गांव जहां कहीं भी जाती वो तो तबाह करती थी, लोगों को लूट खसोट करना, उनको बर्बाद करना, मारना पीटना डराना धमकाना, यही उनका काम। बाहर की फौज, उनका घर का तो कोई है नहीं, किसके ऊपर दया भाव रखे। दया का खजाना की कुंची लोभ ले गई हो, जब दया है ना, लोभ होता है उसके सामने दया आया सब खत्म हो जाती है। इस प्रकार वो मारवाड़ में आई थी तो वो चलते चलते मैदाना गांव के पास में पहुंच गई, जिस फौज में हजारों की संख्या में सैनिक है और अनेक प्रकार के नए नए शस्त्र अस्त्र है उनके पास में, बड़े प्रबल है, सेनापति भी प्रबल है, जिसमें हाथी है, घोड़े भी है, रथ भी है, कई प्रकार की सवारी है उनके। वो मेलाना गांव के पास में पहुंच गए, वहां के ठाकुर साहब महाराज के भक्त थे, शिष्य थे, प्रेम भाव रखने वाले ठाकुर साहब को जब पता लगा, किसी ने आके कहा कि यहाँ पर अमुक मराठा सेना आ गई है तो अब क्या करना चाहिए। ठाकुर साहब ने सोचा कि भाई गांव छोड़ करके भाग चलो, यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे, लोग भी मारे जाएंगे, इससे अच्छा है गांव छोड़ करके भाग जाते हैं दूसरे किसी पहाड़ों में कंदराओं में, जब वो चले जाएंगे तो बाद में वापस अपने घरों में आ जाएंगे। और यही विचार लेकर के वो पहुंचे गुरु महाराज के पास, रामदास शिवराज के पास में। उनसे जाके कहने लगे, भगवान बड़े दुख की बात है, आपत्ति की बात है, यहाँ एक मराठा फौज आ चुकी है युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए, अब वो लोगों को बर्बाद कर रही है, इसलिए हम लोग यदि यहाँ से गांव छोड़ करके कुछ समय के लिए बाहर चले जाएं तो अच्छा रहेगा, ताकि हमारी सुरक्षा रह जाएगी, हम सुरक्षित रहेंगे, और हम सुरक्षित रहेंगे तो फिर लोगों को भी कुछ न कुछ बाद में सहयोग प्रदान कर देंगे। अभी हम लोग यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे, वो हमें सामना हमें कर सकता नहीं, मेरे पास में ताकत नहीं, मेरे पास में शक्ति नहीं, इसलिए जाने दो। महाराज को जब बात कही तो हंसी आ गई। महाराज कहने लगे, तुम क्षत्रिय, और क्षत्रिय का स्वभाव क्या होता मालूम है? युद्धे चाप्य पलायनम। युद्ध का मौका आने पर क्षत्रिय भागता नहीं है, शूरवीर होकर के सामने युद्ध किया करता है। तुम भागने की बात कर रहे हो और मुझे भी कह रहे हो चलो, मैं तो कहीं जाने वाला नहीं, क्योंकि मुझे तो राम भरोसे रमरिया निर्भय रामदास, मतलब राम जी के भरोसे पर रहना वाला हूँ, मैं तो कहीं चलूंगा नहीं, आपको जाना हो तो जाइए, आपको छोड़ के मैं कहां जाऊं, तो मैं कब कह रहा हूं जाओ, मैं तो कहता हूं क्षत्रिय के स्वभाव को काम में लो और इस प्रकार सामना करो। और आज आदमी नहीं सिपाही मेरे पास में, आदमी कार उनके पास में हजारों की संख्या में सैनिक हैं। महाराज ने यही कहा कि भाई थोड़ा घना गिनो मत भाई, साचा रक्षक राम सदाए, कम है सैनिक या ज्यादा है इस बात की कभी गणना मत करो, भगवान सदैव सच्चाई के रक्षक हुआ करते हैं, यदि तुम्हारे में सच्चाई का बल होगा तो भगवान तुम्हारी जरूर रक्षा करेंगे, और सच्चाई का बल नहीं होगा तो ज्यादा होने पर भी वो कुछ नहीं, हारे जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। देखिए ना, कौरव पांडवों की संख्या में सेना में कितना अंतर था, 7 अक्षौणी सेना है पांडवों के पास में, कौरवों के पास में है 11 अक्षौणी सेना, तो 4 अक्षौणी सेना जिस भी एक सेना में, एक अक्षौणी सेना में भी करीबन 2.5 लाख आदमी होते हैं, ऐसे ऐसे इतनी सेना उनके पास भी ज्यादा है। परंतु युद्ध जब हो चुका पूरा महाभारत का, युद्ध पूरे हो जाने के बाद में पांडव कितने थे भाई, थे 5 और कौरव भाई थे 100। अब युद्ध पूरे हो जाने के बाद में कितने कौरव बचे? एक ही नहीं बचा, और पांडव कोई गया? एक ही गया नहीं। एक परिणाम क्या है, ये सच्चाई का बल था इनके पास में, ये तो धर्म तत्व जय, जहां धर्म नाम लिया जाता वो भी सच्चाई का नाम, तो सत्य का जो सहारा है, तो सत्य के सहारे होने के कारण से पांडव तो विजयी हुए और उनका कुछ बिगाड़ हुआ नहीं, और कौरव ज्यादा थे संख्या में, ज्यादा होने पर भी एक भी बचा नहीं, क्योंकि उनके पास में सत्य का सहारा नहीं था, उनके पास में धर्म नहीं था, इसलिए वे सब सुख चले गए। तो तुम भी यहाँ एक अगर सत्य के समान कोई दूसरा बल नहीं है, तो सत्य का बल रखोगे तो कोई बिगाड़ नहीं करेगा, तुम निश्चिंत रहो। तो अच्छी बात महाराज, मैं अब आपका हुक्म है तो आपकी आज्ञा को लेकर के मैं शिरोधारी करके युद्ध करने के लिए जाऊंगा, और मारा भी जाऊंगा तो आपकी आज्ञा पालन करने में मारा गया तो मैं कल्याण ही प्राप्त करूंगा। घर गया, अपने सैनिकों से कहा, भाइयों जिनको युद्ध करने की हिम्मत हो मेरे साथ में चलना हो आ जाओ। 30-40 आदमी कुल इकट्ठे हुए और उनको भी कह रहा, जिनको डर लगता वो घर चले जाना, भय हो कि भाई हम लोग मारे जाएंगे, घर चले जाना, छुट्टी मेरी तरफ से, और जिनको युद्ध करना है वो मेरे साथ चलना। अब सामने क्या कहे भाई, जिनकी खावे बाजरी उनकी बजावे हाजरी, तो हमेशा जिनका अन्न जल लेते हैं तो मना तो कैसे करेगा महाराज, नहीं नहीं हम चलेंगे साहब, हम चलेंगे, हम आपके साथ, हम आपके साथ में चलो आगे ठाकर साहब, पीछे पीछे सैनिक लोग सेनापति के सामने पहुंचे। अब वो मुट्ठी भर आदमी और बड़ी भारी फौज के सामने खड़े भी कितने दिखेंगे, अरे आटे में नमक डालोगे तो नमक कोई दिखता है क्या, आटा तो दिखता है लेकिन नमक नहीं दिखता। इसी प्रकार इन गिने चुने सैनिक लोगों का वहां कोई पता नहीं था, लेकिन फिर भी सामने जाके खड़े हो गए। ठाकर साहब ने जाके एक ही बात कही, सुन सेनापति, ओ सेनापति आओ, तुम पहले अपना वार करो, अभी तुम मेरे यहां पर मेहमान आए हो, मेरे घर पर आए हो, मेहमान के ऊपर मैं कभी हथियार नहीं चला सकता, इसलिए पहले तुम वार करोगे, मार करोगे तो फिर वार का जवाब मैं जवाब दूंगा तुम्हारे को, बताइए, पहले तुम वार करो फिर मैं उसका जवाब दूंगा, मुझे मालूम है मैं युद्ध में तुम्हारे साथ में युद्ध करते हुए मारा जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पास में फौज ज्यादा है, तुम्हारे पास में ताकत ज्यादा है, तुम्हारे साथ में सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, धनवान भी तुम बहुत हो, तुम गढ़वाल बड़े बड़े गढ़ वाले हो और हमारे पास में छोटा सा गांव है, परंतु मैं जीते जीत मैं इस गांव में आपको कभी उत्पात मचाने दूंगा, लोगों को तंग नहीं करने दूंगा, इसके पहले और प्रथम बकारू वाह हो मोई, पीछे हाथ दिखाऊं तो ही ललकार है तुम्हारे को, आओ पहले वार करो। सामने खड़े होकर के इस प्रकार ललकार देने लगे। सेनापति विचार में पड़ गया कि बड़े बड़े सूरवीर लोग कई जगह मेरे सामने आए, लेकिन सब के सब हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगे थे, महाराज क्षमा करो, महाराज हम तो आपके ही हैं, आप हमारे रक्षा करना, आप हमारे माई बाप हो, ऐसे विनती करते, लेकिन ये तो कैसा सूरवीर है जो सामने आकर के मुझे ललकार रहा है, शेर के समान दहाड़ रहा है। वास्तव में एक क्षत्रिय कहलाने लायक सच्चा क्षत्रिय है, और सच्चा क्षत्रिय कभी मारने लायक नहीं होता है, उस क्षत्रिय का सम्मान होना चाहिए इसकी सूरवीरता के लिए। इसलिए वो सेनापति अपने रथ से नीचे उतर करके आया, पैदल होकर के उस ठाकर साहब के पास में गया और उनके पास में जाकर के उनको गले लगाया और अपने माथे की पगड़ी उनके ऊपर और उनकी पगड़ी अपने माथे पर उठा करके कह दिया, शाबाश सूरवीर, तुम्हारे जैसे भाई की मुझे जरूरत थी, आज तुम्हारे जैसे भाई मिल गए, मैं निहाल हो गया, बड़ी अच्छी बात है, ऐसे सूरवीर योद्धा संसार में पड़े कहां हैं, कायर बहुत है, बड़े बड़े लोग होकर के भी कायर मिलेंगे लेकिन सत्य सूरवीर नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरा गांव मुझे बताओ। गांव ठाकर साहब का, लेकिन कहता था मेरा गांव है, अब आज से तुम भाई हो गए, भाई होने के नाते तुम्हारा मेरा गांव एक है, इसलिए चलो हम गांव में चलेंगे। और उसके साथ में अपने सैनिकों को कह दिया सेनापति ने, देखो ये मेरे भाई का गांव है, इसलिए यहां किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रहो, सबका प्रेम जीतो, अब सबको प्रेम देना। इस प्रकार अपने सैनिकों को आदेश दिया, गांव में गए, गांव वासी लोगों ने यथाशक्ति अच्छा प्रबंध किया, भोजन का, जलपान का, सबका सम्मान किया। ठाकर साहब ने भी सेनापति को अपने महल में ले जाकर के आदर सम्मान पूर्वक भोजन कराया। मन में शंका नहीं रत्ती मात्र भी, मैं पराये शत्रुओं के इस गढ़ में आया हूं, कोई जहर दे दिया किसी ने तो कोई शंका नहीं, निर्भय है, क्योंकि उनके भरोसा है कि सच्चा आदमी है और सच्चा आदमी कभी भी बुरी हरकत नहीं कर सकता। इसलिए बड़े आनंद के साथ में दोनों भाइयों ने साथ में मिलकर के बैठ करके भोजन किया, खूब आनंद हुआ, वार्तालाप हुआ, विश्राम किया, गांव में चारों तरफ एकदम आनंद की लहर छा गई। बाद में सेनापति ने पूछा उनसे, ठाकर साहब एक बात बताओ, बोलो, आपके पास में आदमी कम थे फिर भी इतनी हिम्मत कहां से आई आपके पास में, फिर भी ये बताओ मुझे कि देख मेरे पास में नहीं थी, मैं तो भागने वाला था यार, मुझे गुरु महाराज ने हिम्मत बंधाई, तो उनकी कृपा से मैं तुम्हारे सामने ललकार देने के लिए आया था। कहा ओहो ऐसे गुरु महाराज, तो संत तो बड़े दयालु होते हैं, जीव हिंसा करने वाले होते नहीं, फिर भी तुम्हें इस प्रकार प्रेरणा दिया क्यों? वो कह देंगे सच्चाई के लिए सदा प्रेरित करने में, चाहे युद्ध भी करना पड़े तो भी सच्चाई के लिए युद्ध करना है, वो बुरी बात नहीं हुआ करती है, इसलिए उन्होंने प्रेरणा दी है। तो मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। उसके बाद में उन ठाकुर साहब उनको साथ में लेकर के रामदास सिमराज के पास में गए, प्रणाम किया, सत्संग की बातें हुई। ठाकुर साहब पास में ही महाराज ने उन सेनापति से कहा, सेनापति कितने साल की उम्र हो गई आपकी? महाराज उम्र तो 50 साल की हो गई है, अब 50 साल और जियोगे क्या ये तो पता नहीं, तो मौत तो नजदीक आ गई ना। जब 100 वर्ष की उम्र में से 50 साल तो चले गए, इन दिनों में कितनी कमाई कर ली तुमने और कैसी कमाई की है पता है? लोगों को परेशान करना, लोगों को लूटना, उनको बर्बाद करना, केवल यही कमाई की है या परलोक में जाने के लिए कुछ और भी कमाई की है बताओ? राज ये तो कभी मैंने जुनाई सुना ही नहीं, तो सुना ही नहीं तो मरने के दिन पास में आ रहे, फिर आगे को क्या जवाब दोगे? सत्संग की बातें सुन करके सेनापति को भी होश आ गया, वास्तव में मैं लोगों को मार रहा हूँ लेकिन मेरे खुद के मरने के दिन नजदीक आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं। उसी समय से उसने अपने दुष्कर्म का त्याग कर दिया और चुपचाप वहां से वापस अपने प्रदेश की तरफ चला गया, कभी किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि बात उनको पसंद आ गई कि बिल्कुल ठीक है और जीना तो झूठा है और मरना सच्चा है, ऐसे विचार से। सज्जन इसलिए बताया, सात धर्मम से सच्चाई के समान कोई धर्म नहीं है। सच्चाई है तो वो धर्म सदा सच्चाई की रक्षा करता है। और नेत्र समनी रूप शरीर के सुंदरता है आंखों से, आंखें सुंदर है तो शरीर बड़ा सुंदर लगता है, आंखें अगर डबाडब है जयराम जी है तो शरीर कैसा सुंदर लगेगा? अरे ब्याह शादी करो जना पहले आंखें देखे दुनिया, वो आंखें कैड़ी के वो, क्योंकि सुंदरता आंखों में, आंखों को सुंदर किया जाता है। नेत्र समनी रूप सुंदरता आंखों के समान कोई शरीर में नहीं, और जीभ के समान कोई वाणी नहीं, अर्थात जीभ ठीक है तो आप अच्छे शब्द बोल सकते हो, अच्छे वाक्य बोल सकते हो, पर जीभ ही ठीक नहीं है, जीभ कटी हुई है या जीभ पर कोई बीमारी है तो आप क्या शब्द बोलोगे? तो गिरा नायक समनाई सुगंध नाग समनाए, सुगंधी कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये नाक से ही पता चलेगा, अगर नाक नहीं हो तो सुगंध का क्या पता चलेगा? चंचल मन को मनमाई, चंचलता है मन के समान दूसरी नहीं है, पवन के समान गति नहीं है कोई, और आत्मा के समान कोई जानने लायक संसार में नहीं। जानने लायक जो चीज है श्रेष्ठ वो है केवल आत्मा, आत्मा की ही पहचान करनी, मतलब जान करना बोध करना है तो अपने आप का बोध करो, दुनिया का बोध नहीं, दुनिया का बोध कुछ काम नहीं आने वाला है, अपने आप का बोध मालूम करो कि मैं कौन हूं, मैं मानव तन काहे को धार्यो, ये बोध करने लायक बात है कि मैंने मनुष्य शरीर क्यों पाया है, ये जानने लायक बात है। अपने आत्मा की पहचान करनी है। हम दुनिया की जानकारी लेते हैं, दुनिया की इतिहास की, देश की, प्रदेश की, कमुक जगह कौन मिनिस्टर है कौन क्या, ये सब जानकारी लेना चाहते हैं, परंतु खुद के विषय में बताओ करो कि मैं खुद कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन दिशा सु आविया, कहो कौन दिश जाए, रामदास अब भूल गया, यहाँ पड़े हैं आए। इस प्रकार तो आत्मा के समान जानने लायक कोई चीज नहीं है। कार्य को कारण करना, कारण के कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, जैसा कारण होता है कारण के अनुसार कार्य बनता है। तो उत्तम भक्ति गुरुगम में ही, इसलिए श्रेष्ठ भक्ति कोई है तो गुरु तत्व के आश्रय में ही उत्तम भक्ति कहलाती है, अर्थात गुरु का आश्रय ले और वो उत्तम भक्ति का सहारा लेकर के जीवन धन्य बढ़ाओ। जैसे बालक माता का पोक पाकर के बढ़ता है, बेली होती है बेलरी लता, वो पेड़ का सहारा पाकर के और वो बढ़ती है फलती फूलती है, तर पेड़ जो है वो धरती के बल पर प्रबल होता है, बढ़ जाता है। बाल मात पक बदत सतत बेली पक सारा, तर धर गर्ज प्रचंड मंड धर शेष अधारा, नीर पान स्वर समन इंद गाजत घन भारी, दुज विद्या पक भाग पिंड प्राणस इधकारी, तब आधार नृपराज को हरि जल जीव मन मिन आशरो जदरामा आधार पक गुरु दयाल शक जासरो मधुमुख चींटी नाक खग पर मीन सुनीरा श्रीपति सारंग श्रवण सूर बल तेग सुधीरा सेवक बुद्ध सत सती रूप बारंगड़ त्रिपद वैश्य विनद दुजपाठ सेन सेनापति सर्वत शशि शीतल सूरज किरण स्रोज कमोदन इन रता जन रामा बल साद के राम नाम सदगुरु बता। अब बता रहे महाराज पेड़ धरती के सहारे से बढ़ता है, बड़ा भारी बन जाता है, अगर जमीन नहीं हो तो पेड़ नहीं बढ़ेंगे। मंड धर शेष आधारा शेष नारी जी ऊपर रखी हुई है सारे ब्रह्मांड की स्थिति, इसलिए ब्रह्मांड कायम है, अगर शेष की आधार नहीं मिले तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। नीर पान सर समन पानी जो है, पानी के ऊपर जो पत्ते हैं जिससे तैरा करते हैं, पानी के सारे पर तैरा करेंगे नहीं तो वो हवा लग करके उड़ जाएंगे। इंद्र गाजत घन भारी बादलों को देखकर इंद्र की गर्जना होती है, तो बदल होते हैं तब होती गर्जना, अगर बादल नहीं हो इंद्र की कोई गर्जना नहीं हो पाएगी। ब्राह्मण जो होता है विद्या के बल से सदा बलवान रहता है और शास्त्रों का अध्ययन करता है, इसीलिए उसके आधार पर वो लोगों को अनेक प्रकार की ज्ञान चर्चा की बातें सुनाता है, शास्त्र सुनाता है, उससे वो महाराज महाराज कहलाता है। पिंड प्राण सिद्धकारी हमारे प्राण शरीर के आधार पर निवास किया करते हैं। राजा कोई बनता है तो तपस्या के आधार पर राजा को राज्य पद मिलता है, अगर पहले जन्म की तपस्या की हुई है तभी वो राजा बनेगा, अन्यथा राजपद नहीं पा सकता, राजपद मिलता मिलता भी चला जाता है। तो इस प्रकार ये जो आजकल मिनिस्ट्री होती है ना कोई राजपद के समान ही है, कुछ कुछ तपस्या की है 5 साल के लिए राज कुर्सी मिल जाती है, बाद में ढोली घोड़ा करके रवाना कर देते हैं। तब आधार नृपराज को, तो राजा के लिए तपस्या आधार होती है, उसके बिना तपस्या के बिना राजपद रह नहीं सकता, अगर कोई जबरन बन भी जाए तो। हरि जल जीव मिन आश्रो मछली के लिए जैसे पानी ही आश्रय है, पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है, पानी उसके लिए आधार है, और हर जल इसी प्रकार जीवात्मा के लिए परमात्मा ही पूर्ण रूप से आधार है। इसे शिष्य के लिए जैसे इनका अपना अपना आधार है, इसी प्रकार शिष्य के जीवन के आधार के लिए केवल गुरु दयाल सिख जासरो, परम दयालु गुरुदेव जी महाराज है, उनका ही आश्रय है, उनका अवलंबन है, उसी से वो प्रबल होता है, उसी से वो गरजता है, बढ़ता है और लोक परलोक को सुधारता है, जीवन प्रबल बना देता है। बुद्ध सम नेत्र नाई, आंखों से हम देखते हैं लेकिन वास्तव में बुद्धि के समान कोई नेत्र नहीं है। बुद्धि यश बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, जिसके पास में बुद्धि है वो बलवान है, अगर बुद्धि नहीं है तो कितना भी बलवान हो बुद्धि काम नहीं है, उसका शरीर रह नहीं सकता। एक बार की बात ऐसे प्रसंग में सुनने में आई बात है संतों से, एक जगह बुद्धिमान और धनवान दोनों आदमी बैठे थे, दोनों मित्र थे, एक था धनवान और एक था बुद्धिमान। बुद्धिमान कमजोर पैसे में और धनवान बुद्धि की तरफ से कमजोर पैसे के जोर में खूब ताकतवर, दोनों की मित्रता। बैठे बैठे एक दफे बातें होती 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 ये चर्चा चल गई कि धनवान बड़ा है या बुद्धिमान बड़ा है, धनवान बड़ा बुद्धिमान बड़ा, बुद्धिमान तो कह मैं बड़ा, धनवान कह मैं बड़ा। अब मैं बड़ा आपस में वाद विवाद होने लगा, निर्णय कराओ किसी राजा के पास में चलो। मिलकर के एक राजा के पास गए, अपने राजा से जाके कहा महाराज हमारा एक फैसला करो आप, दुनिया में धनवान बड़ा है या बुद्धिमान बड़ा है ये निर्णय हम जानना चाहते हैं, धनवान बड़ा है या बुद्धिमान बड़ा है। बुद्धिमान ने भी एक महाराज बुद्धिमान बड़ा है या धनवान बड़ा है, हमें आपसे फैसला करवाना है, ये बात पूछी। राजा ने कुछ सोच विचार करके कहा आप भी आप बैठिए, इसका मैं निर्णय करने के लिए कुछ विचार करता हूं। अब राजा अपने महल में बैठ गया, बैठ करके विचार करके उसने एक दो पत्र लिखे, दो चिट्ठी लिखी अलग अलग, एक दूसरे अपने मित्र राजा के नाम से दो चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी देके सील बंद कर दी। सील बंद करके वापस आया, धनवान और बुद्धिमान दोनों को बुलाया, एक चिट्ठी दी धनवान को और एक चिट्ठी दी बुद्धिमान को, दोनों से कहा तुम लोग जाओ, मैं आपके इस विषय में निर्णय करने के लिए कुछ समय चाहता हूं, तब तक मेरा एक काम, जरूरी काम करना है, उस मेरे मित्र के पास, राजा के पास में जाकर के काम करके आओ। जो हुक्म था, दोनों एक बड़ी खुशी खुशी वहां से उनके साथ साथ चल दिए। अब नगर में प्रवेश करने के बाद में जब महल में प्रवेश करने लगे, महल में गए, चौक में बैठा दिया गया बरसाली में, राजा से पूछ करके कहा, भाई उस सिपाही ने कहा, महाराज को दो आदमी आपसे मिलने आए हैं, एक एक करके दोनों को भेजो मेरे पास। पहले धनवान को भेजा कि पैसे का, गर्मी गर्मी ज्यादा होती है, सब पहले पैसे का नंबर पहले आता है भाई, तो पहनने के लिए कपड़े भी छेना छेन बढ़िया पहने हुए, गहने कांटे पहने हुए, बढ़िया इत्र लगाया, सेंट लगाया, भबक भबक आ रही है ऐसी, तो उस आदमी को पहले भेजा। उसने जाके राजा को वंदन किया, बैठा, कहा कैसे आए हो महाराज, अमुक राजा ने एक पत्र दिया है आपको, और पत्र पढ़ लीजिए क्या लिखा है, हमें पता नहीं, पत्र सील बंद है। राजा ने पत्र लिया, पत्र खोल करके पढ़ा, उसमें लिखा था पत्र लावे उस आदमी को तुम तत्काल मार देना, इसको मार दो, पत्र लेकर के आवे उसको। मित्र का आदेश पाते ही उसने जल्लाद को बुलाया, कहा जाओ इस आदमी को ले जा करके सूली चढ़ा दो। चटगोटा हो कि वो दंग रह गया, मैं तो न्याय कराने के लिए आया, पूछ रहे तो मुझे मरा क्यों रहे, मराने के लिए क्यों भेजा, गजब हो गया, मुसीबत आ गई, आप बता के इस घर बैठे ठीक से नहीं झगड़ा करते तो क्यों आप मौत आती, हे भगवान कैसी बीती, अम्मी क्या करूं, कहां जाऊं, उन्हें पकड़ लिया, उनका चलो भाई। अब जबरन को पकड़ करके लेके चले, उसे वहां से खींचा, जब खींचे खींचे ले गए, परंतु सूली चढ़ाने के पहले एक नियम होता है, यानी 24 घंटे तक उससे मन की बात पूछी जाती है कि अंतिम तुम्हारी इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा बताओ, तो अंतिम इच्छा के लिए उसको कुछ समय के लिए काल कोठरी में बैठा दिया गया। अब जब बैठा रहने गए जल्लाद, उनसे कहने लगा, भाई साहब मैं थारो तो कोई बिगाड़ियों को नहीं, लोने थाने 10,000 रूपया दे दे उन लोग, थे मैंने छोड़ दो बाबा, थे समझ ली तो मर गयो मैं तो, आटो अंदर 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 ना जाओ, रात रा कोई मुंडे को बताओ नहीं लो, नहीं नहीं हम तो राजा की आज्ञा का पालन करेंगे, तुम्हारे पैसों की जगह 20,000 ले लो, लाख रुपया ले लो, 10 लाख रुपया ले लो, तो जो त्यो करके छोड़ो, नहीं नहीं हम तो राजा का आज्ञा पालन करेंगे, राजा आज्ञा का विरोध कैसे करे, नहीं माने नहीं माने, तो काल कोर्टी में छोड़ करके उसको आगे कल अमुक समय में तुम्हारा इस प्रकार सूली चढ़ने का जो समय है उसमें तैयार हो जाना। अब वो बेचारा अंदर बैठा बैठा तड़प रहा है, हे भगवान अब मैं क्या करूं रे, अब कैसा होगा, क्या करूं रे, क्या करूं क्या करूं। थोड़ी देर में पिछले दूसरे आदमी की बारी आ गई, उसको अंदर भेजा, राजा ने बैठाया, पूछो भाई तुम कैसे आए हो, महाराज पता नहीं पत्र में क्या काम लिखा है, आप पत्र देख लीजिए। उसका भी बुद्धिमान आदमी का भी पत्र खोला, पत्र खोल करके राजा ने पढ़ा, और वही बात इसमें लिखी थी कि पत्र लावे उसको तुम अपने वहां पर मार देना, यही मित्रता की पुरस्कार, मित्रता का पुरस्कार मिलेगा। उसने भी जल्लाद को बुलाया, जल्दी आओ आए, और बुला करके इसको भी ले जा करके जैसे उसको मृत्युदंड है दिया जाता उसको दिया, इसको भी मृत्युदंड दे दो, मार डालो इसको भी। जल्लाद लोल पकड़ने के लिए गए तो पहले वाला आदमी तो जो जल्लाद गए तो हाथ लगाते ही वो रोने लगे, आए रे आए रे आए रे, और जो इन जल्लाद लोगों ने हाथ लगाया खींच के जाने लगे तो वो हंसने लग गया, जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा, ജല്ലാദോ നിക്കാരെ മോഹത്രമുണ്ട് ജായോ നഷ്ടേ ആകെ ബാധ സുളി ചടണിയെ കൽത്തു ഇസിലേ നഷ്ട ആ രീ ജല്ലാദോ നെ ജാ രാജാ സകാ മഹാരാജ പേലെ വാ ആദമി തോ രോ രാ താ യേ ആദമി ഹസ്തേ ലഗ ഗയാ ഹസ്തേ കാ കാരണ സമജ മേ നീ ആ രോ വോ തോ ബാത് സമജ മേ ആവേ മോത് സാമനെ ആ ഗയാ തോ രോണാ അപ്നാ പായേഗാ ലേക്കിൻ യേ ഹസ് രാ ഹസ്തേ കാ കാരണ ക്യോ ഹസ് കൈസേ രാ ഹൈ പതാ നഹീ രാജാ നെ വാപസ് ബുലായാ ഉസ്കോ ബുലാ കേ ലാ ഇധർ ഹസ്താ ക്യോ ഹൈ ഹേതു രത്ര ഭവിഷ്യതി സജ്ജനോ വാപസ് ഉസ്കോ ബുലായാ ബുദ്ധിമാന ആദമി വാപസ് രാജാ കേ പാസ് ആയാ മഹാരാജ മുഝേ വാപസ് ക്യോ ബുലായാ तू हंस क्यों रहे थे अभी जब तुम्हें पकड़ा मारने के लिए ले जा रहे थे तो हंसी कैसे आई उसने कहा महाराज मुझे हंसी आई है मेरे राजा की बुद्धिवानी पर मेरे राजा की बुद्धिवानी पर हंसी आई है क्यों क्या बुद्धिवानी है वो मार देता वहीं पर लेकिन उसने यहां भेजा यही तो बुद्धिवानी है वो वहां मार देता तो राजा को नुकसान होता और तुम्हारे पास भेजा तो तुम्हारे यहां पर नुकसान होगा कैसा क्या मेरी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है मेरे जन्म कुंडली का लेख है जिस जगह मेरे शरीर की एक भी बूंद पड़ेगी उस जगह 12 वर्ष तक बरसात नहीं होगी तो यदि वो राजा अपने यहां मार देता तो उसके यहां अकाल पड़ता बरसात नहीं होती तो मारने के लिए आपके यहां भेजा आपका बदला लेना चाहता दुष्टि बन करके आपको बर्बाद करना चाहता है इसलिए आपके यहां पर भेज दिया हमारे को अरे ये बात है हां सर बिल्कुल नहीं तो खुद क्यों नहीं मार सकता क्यों जल्लाद नहीं है सूली नहीं है फांसी नहीं क्या उसके यहां पर है तो सब कुछ है राजा के बाद दिमाग में बैठ गया हाँ हाँ बात तो बिल्कुल ठीक हो सकती है फिर वो दूसरे के लिए अरे महाराज उसके लिए भी उसकी जन्म कुंडली में लिखा है जिस जगह उस आदमी का खून पड़ेगा उस जगह 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा उसका खून पड़ेगा वहां भी अकाल पड़ेगा वो तो हाँ बात तो ठीक है तभी तो राजा ने यहां पर भेजा वहां अपना खुद क्यों नहीं मारा इसलिए उतारो छोड़ो इन दोनों को छोड़ दो नहीं मारना हमारे यहां पर भागो तुम यहां से चले जाओ दोनों को छोड़ दिया वहां से रवाना कर दिया अब छोटा छोड़ने के बाद में उसको जी में जी आया बेचारे का उस पैसे वाले का हो धनवान आदमी की छाती ठंडी हुई जीते बच तो गए कोई बात नहीं वहां से वे वापस अपने नगर में चले गए राजा के पास में पहुंचे राजा को जाके दोनों ने वंदन किया राजा ने कहा तुम लोग आ गए जी हजूर आ गए हम धनवान ने कहा मेरा फैसला बताओ धनवान बड़ा या बुद्धिमान बड़ा पहले बताओ तुम लोगों ने वहां पर क्या किया तुम्हारे साथ में क्या व्यवहार हुआ दोनों अपनी अपनी बात बता दी ऐसी बात हुई मेरे साथ में उसने ऐसी बात मेरे अब वो धनवान को कहने लगा तेरी अकल अभी तक खुली नहीं आंखें खुली नहीं है तू तो पैसे के जोर से मारा जा रहा था लाख रुपए देने पर भी तू बच नहीं रहा था लेकिन बुद्धिमान खुद भी बच गया तुझे भी बचा लिया इसलिए बुद्धिमान बड़ा बोल धनवान बड़ा बोल अब बात समझ में आई कि महाराज वास्तव में बुद्धिमान बड़ा है मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं तो वही बात यहां बता रहे हैं कि बुद्धि के समान संसार में कोई नेत्र नहीं बुद्धि है तो बुद्धि से बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम जो बुद्धिमान है वही बलवान है ज्ञान के समान कोई मार्ग नहीं है राम जी के समान कोई हमारा स्वामी नहीं है और मौका जब आ गया हो मौके में तो अपनी भुजा ही शस्त्र का काम करती है और भुजा भी कोई शस्त्र हाथ में नहीं हाथ है हाथ से भी अगर पिटे का काम करो तो ये शस्त्र का काम करेगा हाथ आपका मौका आ गया तो उस समय की बात है कोई हथियार नहीं हाथ में आएगा तो क्या मरोगे आप हाथ को काम में नहीं रहोगे हाथ को भी काम देना पड़ेगा तो वाणी बनी शस्त्र ही बाई सत्संगत नहीं साध सम संतों के समान कोई सत्संग नहीं हो सकती और मंत्रों में राम नाम के समान कोई श्रेष्ठ मंत्र नहीं हो सकता जो जन रामानंदी मुक्त कथा गुरु भक्त निश्चित रहे इस प्रकार सदगति अगर किसी को करनी है तो गुरु भक्ति का गुरु महाराज से मंत्र प्राप्त करके अपना सहज में कल्याण कर लो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा इस कल्याण को कोई रोक सकता नहीं जो गुरु का आश्रय लेने के बाद में अपना कल्याण कर लेता है। गुरु महाराज की भक्ति भक्ति में श्रोमणी भक्ति है, गुरु महाराज का दर्शन ही दर्शनों में श्रेष्ठ दर्शन है। सज्जन मित्र मिलाप सर्व परषण पर परषण, सज्जन भी है तो गुरु महाराज, मित्र भी है तो गुरु महाराज, और ऊंचे से ऊंचे है तो गुरु महाराज, सर्व संपूर्ण भावों में रखने लायक कोई श्रेष्ठ भाव है तो गुरु महाराज है, नियम में कोई नियम है तो गुरु महाराज है, नियम में सब कल्याण में कोई श्रेष्ठ कल्याण है तो गुरु महाराज है, गुरु प्रेम में है तो प्रेम में श्रेष्ठ प्रेम गुरु महाराज है, प्रेम के प्रातः ब्रह्म का आनंद लेना है तो गुरु महाराज के संग से आनंद प्राप्त करो, भक्ति रूप गुरुदेव है, दयाल बाल वंदन करत सत्य नित्य चित भेव है, सदैव सत्य रूप है, नित्य रूप है और चित ज्ञान रूप है गुरु महाराज, सच्चिदानंद जो परमात्मा का रूप है वो रूप इनमें मौजूद है, ऐसे उन गुरुदेव जी महाराज के चरणों का आश्रय पाकर के प्राणी सहज में धन्य बन सकता है, धन्य बन जाना चाहिए। अब ये सब बातें बताने के बाद वक्ता ने एक प्रश्न किया, जिज्ञासी सिद्धांती का वचन है कि सार सार जीवन मुगत गुरु प्रकरण अगात, जीवन का अगर कोई एक मंत्र आप प्राप्त करना चाहते हो मुक्ति का मंत्र, तो केवल निश्चित रूप से कल्याण करने वाला गुरु महाराज है। ये सिद्धांत भागवत में नहीं के भागवत में भी यही सिद्धांत बताया गया है, इसलिए मैं भी उसी भक्ति भाव को बढ़ाने वाला सिद्धांत इस ग्रंथ के माध्यम से बता देना चाहता हूं। जब वक्ता ने बातें सुनने के बाद बात बताई कि संशय जीव अमावस्या पूर्ण के जिसके हृदय में अज्ञान ने घर कर रखा है, अर्थात अपने अज्ञान को तो छोड़ता नहीं, और गुरु महाराज के पास में जाकर के ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करना चाहता है तो वो उसे मिलता नहीं। जैसे आप अमावस्या के दिन चंद्रमा को ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा, नहीं रात में मिलेगा नहीं दिन में मिलेगा, क्योंकि दिन में तो सूर्य में दिखता नहीं और रात में चंद्रमा होता नहीं। इसलिए बताया है कि संशय जीव अमावस्या जिसके दिल में संदेह पैदा हो गया है, ऐसे संशय आत्मा विनश्यति, तो संशय जिसके हृदय में घर किए हुए है और वो जो संशय वाला जीवात्मा, उसके लिए पूनम के समान प्रकाश कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि संशय रूपी अमावस्या उसके घर में बैठ गई। तो अमावस्या ने धर्म दिल में घर कर लिया है तो पूनम रूपी प्रकाश गुरु महाराज का ज्ञान कैसे मिलेगा। गुरु सूरज प्रकाश में रातन व्यापे कोई, गुरु महाराज का ज्ञान है वो एक सूर्योदय होने वाला दिन के समान है, वहां पर जहां दिन होता है वहां रात का कभी जोर नहीं चलता, रात का कभी जोर नहीं चल सकता, दिन और रात कभी एक साथ में हमारे सामने रह नहीं सकते, जब प्रकाश है तो उसके सामने अंधेरे को नष्ट होना ही पड़ेगा, पर जो खुद अंधेरे को लिए बैठा रहेगा मुझे तो प्रकाश नहीं चाहिए, उसको भले ही कितने गुरु महाराज ज्ञान देवे वो स्वीकार नहीं करेगा, उसके ऊपर कुछ भी असर होने वाला। सर्वसार श्रुति गयो महापुराण परसोत्थ, महापुराण जो भागवत है उसमें जो ये सारी बातें श्रुतियों में भी बात बताई गई है, कारण सदगुरु सर्व को परमानंद दोत, परम आनंद का जो मुख्य कारण रूप केवल गुरु महाराज है। तीनों काल में राम भगत जुग जुग अखिल, तीनों युग में भूतकाल में वर्तमान और वर्तमान में और भविष्य काल में, तीनों में ये राम जी की भक्ति समान रूप से आनंद प्रदान करने वाली है। तो ये जो बात शास्त्रों की बताई हुई है उन वचनों के ऊपर विश्वास रखते हुए अपने को सदैव महापुरुषों का आश्रय लेकर के अपने जीवन को प्रभु चरणों में समर्पित करते रहना चाहिए। जो संदेह में पड़ा रहेगा वो संदेह के घेरे में पड़ करके 84 लाख के चक्कर में जरूर भटकेगा, जरूर भटकेगा, यहां नित्य में हमेशा नरक में जाएगा और ऊंच नीच अनेक योनियों में भटकता रहेगा। जिज्ञासी ने निवेदन किया, महाराज वक्ता जन वक्ता परम आनंदकारम, तुम तो ब्रह्म स्वरूपम, आप साक्षात ब्रह्म रूप हो, अब मनुष्य जीवन आपने बताया कि परमात्मा के देन है, तो ये ज्ञान का खजाना है, फिर भी इसमें ये भ्रम कहां से पैदा हो जाता है, दिल में भ्रम आता ही क्यों है? तो सिद्धांती ने महाराज ने बात बताई, निज ब्रह्म एक ही अनाद, आप पहले एक अनादि साक्षात ब्रह्म परमात्मा ही मौजूद थे, अखिलेश परम आनंदम आप, जिसमें आनंद की कोई सीमा नहीं, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी एक अकेले थे, वो ब्रह्म तदाकार एक पुरुष था, उनसे एक अपने समान शक्ति वाला ब्रह्म पुरुष प्रकट किया। अब उसके साथ में ही प्रकृति की रचना की, प्रकृति के बाद में महत्त्व की रचना हुई, और उसके बाद में तीन प्रकार का अहंकार पैदा हुआ, सात्विक राजसिक तामसिक, तीन प्रकार का अहंकार पैदा हुआ, और अब तीन प्रकार के अहंकार से पंच विषय, पंच महाभूत इत्यादि ये पैदा हो गए, पंच इंद्रियां पैदा हो गई, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, दस इंद्रियां पैदा हो गई। इस तरह सारी सृष्टि के लिए एक एक चीजें आगे बढ़ती गई, जो नई सृष्टि पैदा होती गई उसमें कुछ न कुछ विकार मिलते गए। उनके बाद में सात्विक देवतागण प्रकट हुए, 14 जो देवता है वो बद मन बुद्धि चित्र अहंकार ये इत्यादि। अब तीन प्रकार से फिर तीन गुण पैदा हुए, जिनसे जंजाल में माया ने इन तीन प्रकार के गुणों से लेकर के जीवों को बांधना चालू कर दिया। उसके बाद में सूक्ष्म स्थूल ये दो प्रकार के शरीरों की रचना हो गई, तीसरा कारण रूप शरीर और बन गया, इनसे शरीरों की रचना होती है। अब ऐसे स्थिति में आते आते अपना मूल उत्पत्ति कारण जो मैं परमात्मा का हूं वो भूल गए, और जहां आप मौजूद है केवल उस स्थान को ही अपना स्थान मान बैठे, कहो यही जो कुछ है सब कुछ है। अब वहां पर नाना प्रकार के कर्म कांड करने चालू कर दिए, ऐसे पंच विषयों के माध्यम से, जिससे छह अवस्था हो गई, उनकी छह अवस्था पैदा हो गई, शरीर की छह अवस्था मानने लगे, जायते जन्म होना, अस्थि मतलब रहना, वर्धते मतलब बढ़ना, विपरिणमते मतलब बदलाव आना, क्षीयते घटना, और मृते नष्ट होना, ये छह प्रकार के शरीर की दशा होने लगे, इनको मानने लगे मैं ही इन अवस्था वाला आकार ही मैं हूं। तो मतलब मैं जन्म रहा हूं, मैं ही मर रहा हूं, मरने में आ गए, जबकि मेरा जन्म न लेना संबंध है ही नहीं, क्योंकि मैं ब्रह्मानंद परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, तो मेरा क्यों नाश होगा? उनका संबंध जोड़ेगा तो नाश मिट जाएगा, और इन चीजों के साथ में आता रहेगा तो वो छह अवस्था में अपने आप को देखना लगेगा। आज मेरा जन्म हुआ, आज मेरी बर्थडे आ गई, आज मैं बड़ा हो गया, आज मैं बैठा हूं, आज मैं बड़ा हो रहा हूं, अब बदल गया, जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया, और मैं मर गया। ये सब अपने आप के ऊपर जोड़ बैठा, ऐसे नहीं होने वाली क्रियाओं को भी ये भ्रम के कारण से, और ये भ्रम है वही तो भ्रम जाल जीवात्मा को पतन की तरफ ले जाता है और भटका देता है। ऐसे भ्रम को केवल भ्रम कोई सतगुरु भांजे रे साचो नाम सुनाए, भ्रम है कोई गुरु महाराज जी कृपा करके मिटा सकते हैं, सच्चा सत्य नाम बता करके, भ्रम कोई सतगुरु भांजे रे साचो नाम सुनाए, सच्चा नाम बता करके कोई भ्रम कोई सतगुरु भांजे रे साचो नाम सुनाय,
भ्रम कोई सतगुरु भांजे रे मन साचो नाम सुनाय, भ्रम कोई सतगुरु भांजे रे मन साचो नाम सुनाय,
वो साचो नाम सुनाय के मैं साचो शब्द सुनाय, भ्रम कोई
सतगुरु भांजे ओ मन
साचो नाम सुनाय, भ्रम कोई
साता भांजे ओ मन साचो नाम सुनाय,
सतगुरु में
मेरे अड़सठ तीरथ नाय राम जी अड़सठ तीरथ नाय उरिया तम इक तार बिनारे उरिया तम इक तार बिनारे जग के गेले जाए भरम कोई शब्द गुरु बाजे मन साचो नाम सुनाए भरम कोई शब्द गुरु बाजे विचार वेद कथा सुन सीख के रे वाचे करे विचार राम जी वाचे करे विचार
नाम निराला रे
गयो रे नाम निराला रे गयो रे कर कर लोकाचार बलम कोई सतगुरु बांधे हो मन साचो
नाम सुनाए भरम कोई
दाता बांधे हो मन साचो नाम सुना मैं साचो नाम सुनाए माने साचो शब्द सुनाए भरम कोई सतगुरु बांधे हो मन साचो
नाम सुनाए
भरम कोई समृत बांधे हो मन साचो शब्द